नमस्ते, मैं आराव हूँ। 9 Not 3 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। जूली डगसन की पुस्तक टॉक टू द एलिफेंट, डिजाइन लर्निंग फॉर बिहेवियर चेंज, कार्यस्थल सीखने और इंस्ट्रक्शनल डिजाइन की व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। इसका मुख्य प्रश्न सीधा है, लोग सही काम करना जानते हुए भी उसे लगातार क्यों नहीं करते। पुस्तक का तर्क है कि केवल जानकारी देना, आकर्षक ई लर्निंग बनाना या नियमों की याद दिलाना व्यवहार बदलने के लिए पर्याप्त नहीं होता। डगसन सीखने के पेशेवरों को व्यवहार विज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस और व्यवहारिक अर्थशास्त्र के विचारों से परिचित कराती है। शीर्षक में एलिफेंट और राइडर का रूपक भावनात्मक, सहज प्रतिक्रियाओं और तर्कपूर्ण, योजनाबद्ध सोच के अंतर को समझाने के लिए प्रयुक्त होता है। पुस्तक का उद्देश्य किसी व्यक्ति के निजी आत्म सुधार का कार्यक्रम देना नहीं है। यह उन लोगों के लिए है जो वयस्कों के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शन सहायता, अनुपालन कार्यक्रम, नेतृत्व विकास या कार्यस्थल हस्तक्षेप बनाते हैं। इसका केंद्रीय योगदान यह है कि डिजाइनर पहले समस्या का निदान करें, फिर ज्ञान की कमी, प्रेरणा की कमी और कार्य परिवेश की बाधाओं के अनुरूप समाधान चुने। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, जानने और करने के बीच की दूरी को प्रशिक्षण समस्या नहीं, व्यवहार समस्या मानना। पुस्तक का आरंभिक और सबसे उपयोगी बदलाव यह है कि हर प्रदर्शन समस्या को ज्ञान की कमी नहीं माना जा सकता। किसी कर्मचारी को सुरक्षा उपकरण पहनने, ग्राहक विवरण दर्ज करने, खर्च रिपोर्ट समय पर भेजने या प्रक्रिया का पालन करने का तरीका पता हो सकता है, फिर भी उसका व्यवहार नहीं बदलता। ऐसे मामले में एक और प्रस्तुति, क्विज या नियम पुस्तिका देने से परिणाम सीमित रहेंगे। डगसन का दृष्टिकोण सीखने के डिजाइनर को यह पूछने के लिए कहता है कि वांछित व्यवहार वास्तव में क्या है, वह कब और किस संदर्भ में होना चाहिए और उसे रोकने वाली स्थितियां कौन सी है। यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रशिक्षण अक्सर उस समस्या का उत्तर बन जाता है जो पूछी ही नहीं गई। यदि प्रक्रिया बहुत समय लेती है, उपकरण अनुपलब्ध है, सहकर्मी पुराने तरीके को प्रोत्साहित करते हैं या गलत काम के तत्काल लाभ अधिक है, तो केवल सीखना समाधान नहीं है। पुस्तक इसलिए सामग्री निर्माण से पहले शोध, अवलोकन और समस्या विश्लेषण को महत्व देती है। इसका व्यावहारिक अर्थ है कि सफलता को पाठ्यक्रम पूरा होने या ज्ञान परीक्षण के अंक से नहीं, वास्तविक कार्यस्थलीय व्यवहार और प्रदर्शन से जोड़ना चाहिए। यह नजरिया लर्निंग एंड डेवलपमेंट को सामग्री उत्पादन की भूमिका से निकालकर प्रदर्शन सुधार की भूमिका में रखता है। दूसरा, एलिफेंट और राइडर के रूपक से तर्क तथा भावनात्मक प्रेरणा को साथ डिजाइन करना। एलिफेंट और राइडर का रूपक पुस्तक की भाषा को यादगार बनाता है। राइडर उस पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है जो योजना बनाता है, कारण समझता है और इरादे घोषित करता है। एलिफेंट उस पक्ष का संकेत है जो आदत, भावना, तात्कालिक असुविधा, डर, सुविधा और सामाजिक संकेतों से जल्दी प्रभावित होता है। व्यक्ति तर्क से सहमत हो सकता है कि नया व्यवहार आवश्यक है, लेकिन दबाव, थकान या पुरानी दिनचर्या के क्षण में एलिफेंट पुराना और आसान रास्ता चुन सकता है। इसीलिए केवल यह बताना कि किसी नीति का पालन क्यों जरूरी है, राइडर को संबोधित करता है पर व्यवहार की गारंटी नहीं देता। डिजाइन में भावनात्मक प्रासंगिकता, छोटे और स्पष्ट अगले कदम, अभ्यास, समय पर संकेत और अनुभवजन्य जुड़ाव की भी जरूरत होती है। पुस्तक का आशय भावनाओं से लोगों को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि यह स्वीकार करना है कि इंसान निर्णय केवल विश्लेषण से नहीं लेते। सीखने के अनुभव को वास्तविक परिस्थितियों से जोड़ना, अपेक्षित व्यवहार को सरल बनाना और उसके व्यक्तिगत या सामाजिक अर्थ को स्पष्ट करना अधिक ईमानदार और प्रभावी तरीका है। यह रूपक डिजाइनर को दोषारोपण से भी बचाता है। व्यवहार ना होने को आलस्य या प्रतिरोध कहने के बजाय वह पूछ सकता है कि वर्तमान परिस्थिति किस प्रतिक्रिया को सहज बना रही है। तीसरा, कॉम्बी मॉडल से क्षमता, अवसर और प्रेरणा की अलग अलग बाधाओं का निदान। डगसन व्यवहार परिवर्तन के निदान के लिए कॉम्बी मॉडल को उपयोगी ढांचे के रूप में प्रस्तुत करती है। इस मॉडल के अनुसार किसी व्यवहार के लिए क्षमता, अवसर और प्रेरणा तीनों की भूमिका होती है। क्षमता में आवश्यक ज्ञान, कौशल तथा व्यवहार करने की शारीरिक या मानसिक योग्यता शामिल हो सकती है। अवसर व्यक्ति के बाहर की दुनिया से आता है, जैसे समय, उपकरण, कार्यप्रवाह, पहुंच, सामाजिक मानदंड और प्रबंधकीय समर्थन। प्रेरणा में विचारपूर्वक लिया गया निर्णय भी आता है और आदत, भावना या तत्काल आकर्षण जैसी स्वचालित प्रक्रियाएं भी। इस विभाजन का लाभ यह है कि एक ही लक्षण के पीछे अलग कारणों को पहचाना जा सकता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति नया सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो उसे शायद कौशल प्रशिक्षण चाहिए, लेकिन संभव है कि प्रणाली धीमी हो, उसके पास अधिकार न हो, या पुरानी विधि तेज और स्वीकार्य लगती हो। हर स्थिति में एक समान प्रशिक्षण देना संसाधनों की बर्बादी है। पुस्तक डिजाइनर को साक्ष्य इकट्ठा करने, लक्षित लोगों से बात करने और वास्तविक संदर्भ देखने की दिशा देती है। कॉम भी पूर्ण उत्तर नहीं बल्कि जांच शुरू करने का ढांचा है। इसकी व्यापकता कभी कभी जटिल लग सकती है, पर इसका मूल्य इसी में है कि यह व्यवहार को केवल व्यक्तिगत इच्छा का परिणाम मानने से रोकता है और वातावरण को डिजाइन का वैध हिस्सा बनाता है। चौथा, स्वायत्तता, दक्षता और सामाजिक जुड़ाव से प्रेरणा को व्यवहार में बदलना। पुस्तक प्रेरणा को केवल पुरस्कार, दंड या उत्साहवर्धक संदेशों तक सीमित नहीं करती। व्यवहार विज्ञान से लिया गया एक उपयोगी दृष्टिकोण यह है कि लोग तब अधिक स्थायी रूप से जुड़ते हैं जब उन्हें कुछ चुनाव और नियंत्रण मिले, वे स्वयं को सक्षम महसूस करें और काम का सामाजिक संबंध समझ आए। स्वायत्तता का अर्थ हर नियम को वैकल्पिक बनाना नहीं है। इसका अर्थ हो सकता है कि सीखने वाला उदाहरण, अभ्यासक्रम, अनुप्रयोग का तरीका या लक्ष्य तक पहुंचने का उपयुक्त मार्ग चुन सके। दक्षता के लिए डिजाइन को इतनी स्पष्टता और क्रम देना चाहिए कि व्यक्ति छोटे सफल कदम देख सके, केवल अंतिम मूल्यांकन की चिंता ना करे। सामाजिक जुड़ाव का अर्थ यह समझना है कि सहकर्मी, प्रबंधक और समूह की स्वीकृति व्यवहार को मजबूत या कमजोर कर सकती है। यदि प्रशिक्षण नया व्यवहार सिखाता है लेकिन टीम उसका उपहास करती है या नेतृत्व स्वयं पुराने नियम तोड़ता है तो संदेश निष्प्रभावी हो जाता है। डर्कसन का व्यापक आग्रह यह है कि प्रेरणा को व्यक्ति के भीतर की स्थिर वस्तु न समझा जाए। प्रेरणा संदर्भ, अनुभव और सामाजिक व्यवस्था से प्रभावित होती है। इसलिए डिजाइनर को यह देखना चाहिए कि प्रस्तावित हस्तक्षेप लोगों को सक्षम, सम्मानित और जुड़ा हुआ महसूस कराता है या उन्हें नियंत्रित, अयोग्य और अलग थलग। यह अंतर अल्पकालिक अनुपालन और टिकाऊ व्यवहार के बीच निर्णायक हो सकता है। अंत में हस्तक्षेप चुनने से पहले प्राथमिकता, परीक्षण और वास्तविक उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया। टॉक टू द एलिफेंट का व्यावहारिक बल केवल सिद्धांतों की सूची देने में नहीं बल्कि समाधान चुनने की अनुशासित प्रक्रिया पर है। व्यवहार संबंधी चुनौती में बहुत से संभावित लक्ष्य निकल सकते हैं, इसलिए हर व्यवहार को एक साथ बदलने का प्रयास डिजाइन को बिखरा हुआ बना देता है। पुस्तक में व्यवहारों की प्राथमिकता तय करने के लिए एपिस मानदंड का उल्लेख मिलता है, जो स्वीकार्यता, व्यवहार्यता, प्रभावशीलता, लागत, दुष्प्रभाव और समानता जैसे प्रश्नों के आधार पर विकल्पों को जांचने में सहायक है। इसका उद्देश्य किसी सूत्र से स्वचालित उत्तर निकालना नहीं बल्कि निर्णय की धारणाओं को स्पष्ट करना है। इसके बाद समाधान को अंतिम उत्पाद मानने के बजाय परीक्षण योग्य परिकल्पना समझना चाहिए। जिस भाषा को डिजाइनर और हितधारक स्पष्ट मानते हैं वह लक्षित लोगों को उबाऊ, अविश्वसनीय या भ्रमित करने वाली लग सकती है। इसी तरह आकर्षक दिखने वाला मॉड्यूल वास्तविक काम के समय अनुपयोगी हो सकता है, इसलिए छोटे स्तर पर लक्षित उपयोगकर्ताओं के साथ परीक्षण, उनकी प्रतिक्रिया और व्यवहारिक संकेतों का अवलोकन जरूरी है। यह दृष्टिकोण सीखने के डिजाइन को पुनरावृत्त प्रक्रिया बनाता है। सफलता का प्रमाण अनुमोदन बैठक या संतुष्टि सर्वेक्षण नहीं बल्कि यह है कि सही लोग सही परिस्थिति में अपेक्षित व्यवहार अधिक आसानी और निरंतरता से कर रहे हैं। पुस्तक इस प्रकार डिजाइनर को समाधान बेचने के बजाय सीखने और सुधारने की प्रक्रिया अपनाने को कहती है। निष्कर्ष में टॉक टू द एलिफेंट विशेष रूप से इंस्ट्रक्शनल डिजाइनरों, लर्निंग एंड डेवलपमेंट टीमों, प्रशिक्षण प्रबंधकों, प्रदर्शन सलाहकारों और उन नेताओं के लिए उपयोगी है जिनका काम वयस्कों के कार्यस्थलीय व्यवहार में बदलाव लाना है, अनुपालन, सुरक्षा, नई प्रक्रिया अपनाने, ग्राहक सेवा, नेतृत्व व्यवहार या डिजिटल उपकरणों के उपयोग जैसी चुनौतियों में यह पुस्तक एक उपयोगी प्रश्नावली देती है। पहले यह समझिए कि अपेक्षित व्यवहार क्या है, फिर जांचिए कि बाधा क्षमता, अवसर, प्रेरणा या इनका संयोजन तो नहीं है। इसके बाद ही सीखने, कार्यप्रवाह, सामाजिक समर्थन या प्रदर्शन सहायता का समाधान चुनिए। पाठक को व्यवहार विज्ञान की विशाल दुनिया का पूर्ण अकादमिक सर्वेक्षण नहीं मिलता बल्कि उस शोध को डिजाइन निर्णयों से जोड़ने का व्यावहारिक माध्यम मिलता है, यही इसकी विशिष्टता है। सामान्य प्रशिक्षण पुस्तकों में अक्सर ध्यान आकर्षक सामग्री, उद्देश्यों, गतिविधियों और मूल्यांकन पर केंद्रित रहता है। डर्कसन इन तत्वों को नकारती नहीं पर पूछती है कि वे वास्तविक परिस्थिति में क्या बदलेंगे। एलिफेंट और राइडर का रूपक इस बात को सरल बनाता है कि तर्कपूर्ण जानकारी और भावनात्मक आदतन प्रतिक्रियाओं दोनों का ध्यान क्यों रखना पड़ता है। कॉम भी जैसा ढांचा वातावरण और अवसर को भी विश्लेषण में लाता है जिससे व्यक्ति को ही समस्या मान लेने का जोखिम घटता है। जिन पाठकों ने डर्कसन की पिछली पुस्तक डिजाइन फॉर हाउ पीपल लर्न पढ़ी है उन्हें कुछ सिद्धांत परिचित लग सकते हैं क्योंकि यह प्रेरणा और व्यवहार परिवर्तन पर गहरा विस्तार है। फिर भी इसे स्वतंत्र रूप से पढ़ा जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता बेहतर पाठ्यक्रम बनाने में नहीं बल्कि गलत प्रशिक्षण समाधान बनाने से बचाने में है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जूली डर्कसन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।